में परमात्मा प्रकृति कार्य का संचालन कर रहा हूँ, मैं मेरे निर्देशन में सूर्य घूमता चंद्रमा उदय होता है। वे सोचते हैं ऐसे चिंतन या ध्यान से वे मुक्त हो सकते हैं, कि तो देखा जाता है कि ऐसे व्यर्थ ध्यान के 3 मिनट बाद ही वे प्रकृति गुणों में बन जाते हैं। अपने उच्च ध्यान के तुरंत बाद ही ध्यान करता प्यासा हो उठता है और कुछ पीना या धूम्रपान करना चाहता है। यदि वह प्रकृति की मजबूत मूर्ति में रहता है तो वह सोचता है कि माया के पास से मुक्त हूँ। देवती का प्रश्न ऐसे व्यक्ति के लिए है जो ये छोटा दावा करती है वह सब कुछ है, अंत में हर या पाप या पुण्य कर्म नहीं होता। ये सभी निरीश्वरवादी खोजे है। वस्तु जब तक मनुष्य भगवत गीता में बताई गई विधि के अनुसार भगवान की शरण नहीं जाता तब तक माया के पास से छुटकारा नहीं होता। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमल श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सप्रजातं सगणनाथामृतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च सलिलानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावयान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविषये हे कृष्णगणासिन्धुरीनवतोचरत्रे गोपेश गोपिकाकान्तराधाकान्तनमोऽस्तुते रक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शुभां सुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु
अत्यंत विस्तृत रूप से भागवत एकादश कल में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश दिए है और दूसरा उपदेश भगवान कपिल देव के रूप में दिए है। अन्य भी है वैसे श्री कृष्ण में भगवान ऋषभ देव का भी, परंतु कुछ श्लोकों में भगवान बीच बीच में भक्तों से जो भी संवाद किए, ध्रुव के साथ, प्रहलाद के साथ, बलि महाराज के साथ, तो कुछ श्लोकों में दुर्वासा ऋषि के साथ, परंतु अधिक विस्तार से जिस प्रकार से अर्जुन को उपदेश दिया वैसे ये दो उपदेश प्रमुख है। और भगवान प्रभु से भी कहते हैं तो जीवों के कल्याण के लिए विचार करते, तो इसलिए दो उपदेश को बहुत विशेष महत्व रखा गया। पहले को उद्धव गीता कहा जाता है, जो एकादश कल में वह भी बद्ध जीव किस प्रकार से अंततः संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है उसका वर्णन है। और यहां पर भी प्रारंभ है इस वक्त कि भागवत माता देवती जहां पर प्रथम जिज्ञासा की है निर्विण्णा नितरं भूमं असत्यं ते दर्शना, येन संभाव्यमानेन प्रपन्ना अन्नं तमा प्रभु। किस तरह से इस संसार से हम मुक्त हो सकते, वहां पर जिज्ञासा माता देव जी की। तो 25वें अध्याय में सर्वप्रथम प्रारंभिक भक्ति की महिमा, सत्संग की महिमा से किया। फिर अंततः 26वां अध्याय जब माता देव की कैसे उस भक्ति का अनुभव किया जाए, तो पहले सांख्य का वर्णन किया गया था 26वें अध्याय में, कैसे ये महत सृष्टि होती है। विश्लेषणात्मक ज्ञान जब इस संसार में हो तो सहज संसार का जो आकर्षण है वह कम हो जाता है। यह भी पद्धति वैराग्य उजागर करने की, देखा जाए तो देह के प्रति हमारा आकर्षण बहुत होता है, परंतु देह के अंदर के जितने भी अवयव है, कफ है, पित्त है, वायु है, मल है, मूत्र है, इन सबको अलग अलग करके रख दिया जाए तो वहां आकर्षण नहीं है ना। जो इसको एक रूप जब दे देता है भगवान, उसमें जितना आकर्षण होता है, जब इसका अगर विश्लेषणात्मक ज्ञान हो जाए अंत तो गतवाणिया संसार की तत्वों से बना हुआ है, उन तत्वों की जो नश्वरता है और उनका जो मूल उद्गम अंत का भगवान है, यह ज्ञान समझाने के लिए लगभग सांख्य का वर्णन किया गया। तब अंततः यह जो जगत, इस जगत के जीव का और जगत का जो संबंध है वो लगभग इस अध्याय में है। प्रकृति के संपर्क में जीव आता कैसे है, इसमें बंधन कैसे, तो मुक्त कैसे होगा, लगभग सार रूप में यह इस संपूर्ण अध्याय का सार है। प्रथम श्लोक से प्रारंभ के सार में यह 18 श्लोक में जो वर्णन किया गया, प्रथम श्लोक में मूलतः जीव कई संसार से कोई, मतलब इस भौतिक जगत से कोई संबंध है ही नहीं। जिस प्रकार से एक वर्षा की बूंद होती है, वर्षा की बूंद पूर्णतः शुद्ध होती है, वैसे अगर तू अविकारात अकर्तृत्वा निर्गुणात्वा जलार्थवत्, जिस प्रकार से जल के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है और जल में यदि कुछ बदलाव होता है, जल में लहरें आती है, उस प्रकार से प्रतिबिंब भी विकृत दिखाई देता है, मूलतः सूर्य प्रभावित की वजह से आत्मा मूलतः जीव जो है, जो नित्य भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, यह गुण बताए। ईश्वर अंश जीव है, भगवान का नित्य अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमर है, अगर कोई संबंध नहीं, दोष नहीं है, सहज सुख राशि और सहज स्वाभाविक जिसे श्रुति के शब्द में कहा जाए तो आनंदमय अभ्यास। तो प्रथम श्लोक में इसी बात को बताया गया, परंतु वही जीव इस संसार में फंसता कैसे है, तो केवल एक ही चीज है उसे कहते हैं झूठी पहचान अपनी, जिसके शुरू भाषा कहते फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। तो लगभग दो तीन चार तीन श्लोकों में उस बात को बताया गया कि जीव गलती से अपना परिचय से मान लेता है और गलत परिचय के कारण ही सब शुरुआत होती है। ये कह सकते संपूर्ण बंधन का मूल आधार है प्रथम जीव का भगवान से अपने संबंध का विस्मरण, इसके फलस्वरूप जीव इस जगत से अपना एक संबंध बना लेता है और उसके कारण फिर वह जो आज के श्लोक में लगभग बताया कि वह अपने आपको करता मान बैठता है। तो दो तीन चार श्लोक में उस बात को बताया गया था, फिर पांचवा श्लोक अतः एव निश्चित्तम प्रसक्तम असताम पति भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्याश्च नयेत् वशम्। किस उपाय क्या है, तो उपाय को पांचवे श्लोक में बताया गया कि मुक्त जीव है, मुक्त जीव इस संसार से जबरदस्ती अपनी पहचान बना ली और उस पहचान के कारण वह संसार में अपने आप को बांधना। आगे चलकर इस अध्याय के अंत में लगभग कैसे जीव का इस संसार का मोह है, तो कहा जाता है स्वप्नवत। जिस प्रकार से स्वप्न में व्यक्ति अपने परिचय बना लेता है, स्वप्न में जो क्रिया करता है और उस क्रियाओं के फल स्वरूप कभी वो भय से ग्रसित हो जाता है, कभी क्रोध से, कभी ईर्ष्या द्वेष से, और कब तक रहता है, जब तक वो स्वप्न अवस्था में जैसे कोई बाहर से आगे व्यक्ति उसको हिला कर चढ़ा दे, तो जितना भी उसने क्रिया स्वप्न में देखी उसका अकिंचित मात्र भी उसके व्यवहारिक जीवन में प्रभाव नहीं कर। वैसी जब तक वहां उस स्वप्न से अपना संबंध जोड़े तब तक उसे भय और क्रोध है, वैसे ही जब तक वह इस संसार के प्रति ममत्व भाव को बना के रखा है उसने कि मैं इस संसार का हूं, ये संसार मेरा है, इसलिए एक और सुंदर वाक्य पढ़ गया तो कहते हैं कि प्रतिदिन इस बात को स्मरण करना चाहिए। कभी अलग संत उसमें एक संत है स्वामी राम सुदास जी, कुछ नियमित प्रार्थनाएं हो गए थे, उसमें प्रार्थना जो सबसे पहली प्रार्थना कहते थे कि प्रतिदिन इस बात को भगवान की समझ रहा चाहिए कि मेरे इस संसार से कोई संबंध नहीं है, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से और किसी पद से भी इस संसार कोई संबंध नहीं है और मैं केवल केवल मेरा संबंध भगवान के साथ है, भगवान ही मेरे अपने हैं। यह संबंध का स्मरण प्रतिदिन करना चाहिए कहते हैं। तो बारहवें श्लोक में से बात करते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन विरक्त्या, दो उपाय बताएंगे वहां पर बारहवें श्लोक में कैसे संसार का मोह निकले। तो आप पर दो शब्द होता है कि तीव्र मंथन करके शायद तेल निकालना संभव हो जाए, परंतु बिना हरि भजन न भवत रही, यहां सिद्धांत का प्रयोग कि जब तक हरि का भजन न हो, जब तक हरि का पूर्ण रूप में आश्रय न दिया जाए, तब तक बंधन का नाश हो ही नहीं। तो वह विधि बताएगी और वहां पर भी आप देखेंगे सात से जब प्रारंभ हो सबसे पहला शब्द वहां दिया गया था जैसे मई भावे न सत्य न कथा श्रवणे न चल, कि किस तरह से यहां कौन सी पद्धति, तो छह सात आठ नौ दस ये चार पांच श्लोक में आप सुने। सबसे पहला प्रारंभ हुआ है मत कथा श्रवणे, जो निरंतर कथा का श्रवण करे। घूम फिर आप देखेंगे भगवान भक्ति ने इस बात पर बहुत अधिक जोर दी। जब प्रारंभ भी होगा 25वां अध्याय तो वहां भी प्रारंभ वही से होता है। संसार का बंधन का मूल कारण इस संसार के संबंध के प्रति आसक्ति, परंतु वही मुक्ति का द्वार बन जाता है जब उस आसक्ति को संसार में संग में लगाते हैं। साधु के संगति में यदि आसक्ति हो जाए तो मुक्ति का द्वार है। और क्या किया जाए साधु की संगति में, तो वहां पर साधु की संगति में बैठकर कथा का श्रवण सबसे प्रथम उपाय वहां बताएंगे। और पुनः उसी बात को यहां पधारा जा रहा है। अब फिर उत्तर भी देंगे हम माता देवती की जिज्ञासा हो रही, तो जिज्ञासा के उपरांत भी जो उत्तर आने वाला है अनिमित्त निमित्त श्रवण करना होगा भगवान के विषय में, भगवान की कथा का श्रवण बहुत दीर्घ काल तक, क्योंकि भगवान से संबंध है। परंतु दीर्घ काल से हम इस संसार के बीच रहे, संसार का आश्रय लिए, इसलिए वह भगवान के साथ जो संबंध का विस्मरण हो चुका है। इसीलिए शुद्ध संभुतया चिरम यह उपाय भगवान का विधेय बताया यहां पर। तो पहले 6 से 11 तक यह सांख्य पद्धति कही गई है। यम नियम का वर्णन किया जाता है। और एक बार देखते हैं यदृच्छ उपलब्धेन संतुष्ट, मतलब जो प्राप्त हो जाए बिना कठिनाई उसमें संतुष्ट रहना। मित भूख हो मतलब मित आहार, विविक्त हो वैराग्य, एकांत स्थान में रहना, शांत रहना, सभी के लिए मित्रता का भाव, दया का भाव, ब्रह्मचर्य व्रत, गंभीरता का पालन करना, अपने कर्मों को भगवान को फल को अर्पित करना, इस तरह के यहां 7 से 11 तक सांख्य का वर्णन किया गया। इस तरह से क्रमशः इन सब नियमों का पालन करने से जीव संसार से मुक्त हो सकता है ऐसा बताएंगे। फिर आगे 11 से लेकर 12 तक ज्ञान पद्धति का वर्णन किया गया। सर्वत्र आत्मा और भगवान का दर्शन, इसको जब अनुभव किया जाता है तो वह क्रमश जीव को मुक्त करता है। तो दो पद्धति जैसे यहां बताया गया ठीक ऐसा ही लगभग वर्णन श्रीमद् भागवत 6 स्कंध में भी किया गया। जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किए नरकों का वर्णन, और नरकों का वर्णन सुनने के पश्चात परीक्षित महाराज बहुत दुखी हुए। ऐसे भयंकर भयंकर नरकों का वर्णन 5वें स्कंध के अंतिम भाग में किया गया। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्तर नानोपरि आत्मानया तन्मे व्याख्यातमर्हसि, कि आपने इन नरकों का वर्णन किया है। नाना उग्र यातना, भयंकर कष्ट होते संसार में, हर व्यक्ति जो कर्म करता है उसके मन उक्ति पाणि भी, आप मन से कुछ क्रिया करते हैं, वाणी से कुछ क्रिया करते हैं और शरीर और इंद्रियों से कुछ क्रिया करते हैं, प्रत्येक क्रिया का निश्चित प्रतिफल होता ही है। तो उससे मुक्त जीव हो नहीं सकता, बहुत कठिन है। तब परीक्षित महाराज बहुत दुखी हो गया, कैसे इस संसार के इस भयंकर यातनाओं से जीव मुक्त हो। वैसे माता देवी के यहां पर भगवान कपिल देव से उसी प्रकार की जिज्ञासा की है। 18-19-20 17-18-19-20 ठीक है तो सार रूप में माता देवी की क्या सार पुनः जैसे परीक्षित महाराज के भाग है तो वैसे ही भाग है माता देवी का जिसे एक वैष्णव का मूल भाव कहा जाता है अन्य जीवों के प्रति उसके मन में दया होती है प्रहलाद महाराज भी जिस तरह से कहे नैवो तुझे सामने प्रकट हो गए यहाँ पर आप देख रहे माता देवती के समक्ष साक्षात भगवान है तो यहाँ पर अब माता देवती की मुक्ति का प्रश्न है माता देवती का निश्चित रूप से वहां तो भगवान जी के पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए उनके बंधनता का कारण है तो कुछ आचार्य इस भाव को बताते माता देवी संसार के जीवों के लिए ही जितने भक्तों का जो भगवान से संवाद हुआ है उसका मूल एक प्रयोजन है कि संसार के जीवों के कल्याणार्थ यही प्रश्न पूछते हैं भागवत में गीता में जितने शास्त्र है उपनिषद में पुराणों में मूलतः संवाद ही है प्रश्न है प्रश्न उत्तर दिए गए तो यहां पर भी यह प्रश्न माता देवी पूछ रही है कैसे प्रश्न है तो वहां पर शुद्ध गोस्वामी कहते भगवत भी लोक मंगलम इस संसार में सबसे बड़ा कल्याण होता है इस तरह की जिज्ञासा की जाती है यत् कृतः कृष्ण संप्रश्न येनात्मा सुप्रसीदति कृष्ण के विषय में जो जिज्ञासा की जाती है आध्यात्मिक जिज्ञासा किनको प्रश्न पवित्र करती है वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्र पुनाति वक्ता शत्रुगम पृछन तत्पाद सलिलम यथा तीन लोग एक साथ पवित्र हो जाते हैं जिस तरह से जब गंगा नदी प्रवाहित होती है गंगा नदी के संपर्क में जो कोई आता है वो पवित्र हो जाता है वैसे वासुदेव कथा प्रश्न भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के विषय में प्रश्न जो होता है पुरुषात्रि पुनाति तीन लोग पवित्र होते हैं पृच्छकम जो प्रश्न पूछता है वक्ता जो प्रश्न का उत्तर देता है और श्रोत्र और अन्य जितने सुनते हैं तीनों पवित्र हो जाते हैं तो इस संसार में ऐसे कई अनावश्यक लोग चर्चा भी करते रहते हैं अनावश्यक संवाद परिसंवाद होता है जिसका वास्तविक कोई लाभ नहीं है परंतु जब जब ऐसे प्रश्न पूछे गए मैंने कहा दो तीन प्रसंग स्मरण सुध गोस्वामी प्रश्नों की प्रशंसा की है सुखदेव गोस्वामी प्रशंसा की है क्या श्लोक द्वितीय स्कंध का प्रारंभ आत्मविद संबंध भूत श्रोतव व्याधि श्लोक पहला का श्लोक वहां पर वैसे ही चलता है वर्यान केशते प्रश्न कृतो लोक हितम सुखदेव गोस्वामी प्रश्न की प्रशंसा किया पे वर्यान केशते प्रश्न कितना सुंदर प्रश्न है कृत लोक हितम रूप सुख गोस्वामी शब्द के थे शब्द प्रयोग किए भगवत भी लोक मंगल कि आपका ही प्रश्न संपूर्ण जगत का कल्याण के लिए सुखदेव गोस्वामी के लोक हितम रूप आत्मविद संबदा पुंसाम शोधक व्याधि पर जो आत्मविद है, आत्म साक्षात्कार है, सुनने लायक यदि कोई विषय है तो वास्तव यही है श्रोतव व्याधि पर सबसे श्रेष्ठ यह विषय है जो माता देवती यहां पर पूछ रही है। तो माता देवती का प्रश्न है जो है लगभग परीक्षित महाराज की प्रसन्न से मिलता है। यहां पर भगवान कबीर के दो उपाय बताए, पहले बताए कि जीव मूर्खता मुक्त है परंतु अपना परिचय संसार से बना लिया तो मुक्त हो, अगर उस संसार से परिचय से अपने आप को अलग कर दे तो मुक्त हो जाएगा। कैसे किया जाए, दो पद्धति बताएगी, पहले सांख्य पद्धति यम नियम ब्रह्मचर्य ऐसे शब्द बिल्कुल वहां पर भी गए मैं दोनों ये देखते हुए मैं वही समझ रहा था वहां पर भी गए थे तब सार ब्रह्मचर्य ने शमेन धमेन जो जागे सत्य शौचाभ्याम यमेन नियम यह सब नियम वहां पर भी बताए गए अलग अलग नियमों को पालन करो फिर नियम को पालन करते 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 व्यक्ति पवित्र हो जाता है। यहां पर भगवान कबीर देव ने इन नियम को पालन करके मुक्त हो जाएगा। फिर दूसरा होता है ज्ञान मार्ग, तो ज्ञान मार्ग के द्वारा देखिए यह पता करने की हर मुर्दा आत्मा हर शरीर निवास करता है और आत्मा के ऊपर नियंत्रण जो भगवान है तो भगवान और आत्मा को सर्वत्र अनुभव यदि करने लगे तो संसार का ये जो बंद है उसमें मुक्त हो जाता है। परंतु मराठी में ही कहते हैं हमारे कर्तव्य पर वर्ण असर तो होता नहीं। उस दिन मैं आपको भी किसी वक्त चर्चा कर रहा था, मैंने उसे बताया बहुत जैसी कुछ आध्यात्मिक विषय पर चर्चा हुई और उसने भी सरल भाषा में कहा प्रभु यार उसे बोलते हैं इतनी अच्छी बात लगती है इतनी अच्छी बात लगती है पता नहीं उसका उसका असर ही चला जाता है। उसके दो कारण होते हैं, एक तो कहने वाले की तीव्रता उतनी ना हो कब जैसे पिछले वाले दृष्टांत हम चर्चा किए थे पुराने जमाने में तोप के गोले छोड़ जाते थे यह दृष्टांत हमने दिया था कि वो बारूद भरा जाता है वो तोप के अंदर में और उसमें फिर आग लगे जाती है तो गोला फिर दूर जाके गिरता और गोला कितने तो आपके अंदर जितना ज्यादा बारूद होगा उतना गहराई तक उतने दूर तक आपका गोला जाएगा। आपके अंदर जितना अधिक भक्ति प्रगाढ़ रूप से होगी उतना प्रभाव गहराई तक जाता है। कहने के वाक्य में ही होता है प्रभु जी ने तो महाराज कह रहे थे कि प्रथम पहली बार उनकी श्री प्रभुपाद से भेंट हुई और श्री प्रभुपाद ने आंखों में देखा इंद्र महाराज को उसे इतना कहा कि विश्वास करो तुम शरीर ही आत्मा हो। मैंने भी कहा हमारे वाक्य हमारे वाक्य तो ऐसा हो गया जैसे कोई वो बंदूक की खिलौने बंदूक होते हैं निमाई के हाथ में जैसे निमाई के हाथ में बंदूक रखे तो निमाई के हैंड सब कोई भय नहीं था। हमारा वाक्य लगभग वो बिना गोली की बंदूक के वही वाक्य जो श्री प्रभुपाद ने मुझसे श्री प्रभुपाद ने कहा तो श्री प्रभुपाद के उस वाक्य में इतना अधिक आध्यात्मिक शक्ति थी कि उसका प्रभाव हुआ। एक वाक्य से ही ऐसे कई भक्त हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया तो प्रभाव हुआ नहीं है। तो उसका पहला कारण यह भी है कि कहने वाले के अंदर वो कितना आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन। परंतु दूसरा है कि वह एक है कि जो दे रहा है उसमें उतनी शक्ति हो, दूसरा है जो ले रहा है उसमें धारण करने की शक्ति हो। जिस तलवार को दे दी जाए तलवार यदि पकड़ नहीं आया तो फिर आपको यदि दूर दे दिया जाए दूर आप धारण न कर पाए। जैसे यहां पर कथा की उपस्थित हो तो आवश्यक है सही आसन होना चाहिए आपके लिए श्री गोविंद पहले तुरंत कुर्सी देखते हैं, मान लीजिए श्री गोविंद किसी कुर्सी पर बैठने के लिए आया है और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कुर्सी के चार में से एक पैर टूटा हुआ था और बिना ध्यान दिए बैठने का प्रयास कर क्या होगा, स्वाभाविक वो बैठ नहीं पाएंगे। तो कोई भी योग्य स्थान होना चाहिए उस पकड़ वस्तु को बैठाने के लिए। तो वैसे ही ये मुक्ति के लिए दो विधि बताई गई है, सांख्य की विधि ज्ञान की विधि, परंतु उसका प्रभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो यहां पर जो माता देवी कह रही है लगभग 17 वर्षों से पुरुषम प्रकृति ब्रह्म विमुंचति करेचि, इस संसार अनुभव क्या है कि सदैव निरंतर जीव इस संसार में ही रहा है, संसार से अलग अनुभव वो है नहीं। तो इसीलिए कभी जीव और प्रकृति अलग होते नहीं, जैसे भगवान और प्रकृति सदैव साथ में रहते हैं। अपश्यत पुरुषं पूर्वं माया तत् अपाश्यत, भगवान व्यासदेव कहते हैं, भगवान व्यासदेव ने जब भक्ति योग मनसी सम्यक प्रणत मरे, भक्ति योग के द्वारा जब भगवान का दर्शन किया तो कैसे भगवान का दर्शन किए, तो कहा जाए व्यासदेव ने साक्षात भगवान को देखा और भगवान के पीछे परछाई के रूप में माया को भी देखा। माया प्रकृति सदैव भगवान के आश्रय में रहती है, निकटस्थ माया शब्द वहां पर है, कृष्ण भूलिया जी भगवान से निकटस्थ माया दारे जहां पर है, माया एकदम निकट में एकदम बगल में ही रहती है श्री कृष्ण के, सदैव श्री कृष्ण के आश्रय में रहती है। तो जैसे प्रकृति कभी माया को छोड़ती नहीं है, सॉरी प्रकृति कभी भगवान को छोड़ती नहीं है, वैसे जीव कभी प्रकृति को छोड़ता नहीं है, ये माता देवी कह रही है। और फिर कल जो श्लोक हुआ था दो दिन पूर्व यथावंद से भूमेश्वर न भावो व्यतिरेकतः, इसे पृथ्वी और गंध को अलग नहीं किया, पृथ्वी गंध को कभी अलग नहीं किया जा सकता है और जल के स्वाद को कभी अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे जीव और प्रकृति को अलग हो नहीं सकते। तो जीव जब तक संसार में है, संसार में तीन गुणों से युक्त शरीर को धारण किया हुआ, तो कैवल्यम तेषु अतः कथम, वो जीव कैसे मुक्त हो सकता है इस संसार में जो रहते। तो इस तरह की लगभग ये जिज्ञासा ना माता देव की यहां पर कह रही है कि जीव जब तक संसार में है तो इतना आसान नहीं है इस संसार से मुक्त होना। जो लगभग देखा जाए तो इस संसार के लोगों के बीच में जाकर संसार को कहते हैं बहुत मुश्किल है, संसार छूटता नहीं है, कैसे संसार छूटे किसी को आपको तो है, भगवान की माया कितनी प्रबल है, छूट नहीं रही। तो दृष्टांत सर सुन देखिए, एक संत एक व्यक्ति के पास गए, राजा के पास गए, राजा को उपदेश देने का प्रयास किया, राजा ने कहा कि महाराज जी आपके कह रहे हो तो सही बात है परंतु छूटना नहीं संसार, राजा का दरबार है, राजा के दरबार में राजा को उपदेश दे रहे संत महात्मा, राजा कह रहे कि आप बात अच्छी कह रहे हो, संसार छूटता नहीं है। तुरंत संत महात्मा ने वहां उसी राज दरबार में राजा के समक्ष एक स्तंभ था, स्तंभ को जोर से पकड़ लिया और पकड़ने जोर से मारे, महाराज बचाओ। तो राजा ने कहा कि संत महात्मा क्या हुआ, बोले क्या हुआ, बचाइए, क्या हुआ, खंभे ने पकड़ लिया। जैसे ही राजा ने सुना तो बोले महाराज खंभे ने नहीं पकड़ा, आप खंभे को पकड़ लिया, छोड़ दीजिए, नहीं, खंभा मुझे पकड़ने का प्रयास किया, महाराज उस खंभे ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने खंभे को पकड़ा है। तब राजा ने कहा कि वैसे ही संसार में प्रकृति ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने प्रकृति को पकड़ लिया है संसार। मूलतः उसके साथ अपना परिचय बनाकर भयम द्वितीय द्वितीय अभिनिवेश यहां पर अगला श्लोक आएंगे, तीसरे श्लोक में भय का वर्णन करेंगे कि कितना भी ज्ञान हो जाए, थोड़ा ज्ञान होने के बाद कि संसार नश्वर ये सब ज्ञान होने के पश्चात शायद भय उस समय के चला जाए, परंतु आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। प्रवचन सुनने से, ज्ञान को धारण करने से आत्यंतिक निवृत्ति तब तक नहीं होती जब तक स्वयं भक्ति योग के द्वारा भगवत सेवा के द्वारा संबंध ज्ञान में जीव स्थित न हो जाए। जीव कृष्ण दास यही विश्वास करने द्वार दुख ना है, यह जब अनुभव जीव जब तक न कर ले श्री कृष्ण से संबंध का, तब तक वह इस संसार के प्रभाव में बने रहता है। ऐसे में ये दृष्टांत भक्तों को बताएगा कि कैसे इस संसार में रहकर भी हम जीवन मुक्त अवस्था में रहे, ऐसे में दृष्टांत भी दिया। तो लगभग ये सर्वसाधारण जिज्ञासा है माता जी देवती की, सभी के मन में प्रश्न रहता है कैवल्यम एषु अतः कथम गुणेषु सत्सु प्रकृते। इस संसार में जब जीव है, संसार में शरीर के अंदर है और तीन मुंड के अंदर चलते रहते हैं, जैसे यहां पर भी यमदूत विष्णुदूत के संवाद में कहा गया है कि तीन गुणों का प्रभाव है, तीन गुणों के प्रभाव के अनुसार यदा अग्नि तपसा युक्त उपास से व्यक्त में हुई, कभी तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कभी रजोगुण का प्रभाव, कभी सतोगुण, और उस भूतेषु गुण वैचित्र्या तथा अन्य प्रलोभ्यते कि जैसे इस गुण का जो प्रभाव होता है सम्भवंति भद्राणि विपरीतानि च नगर कारिणाम गुण संगोष्ठी देहवान नहीं अकर्मक। ये तीन गुण का प्रभाव चलता है, तीन गुण के प्रभाव से अनर्ग कार्य करता है और जैसे कार्य करता है उसमें अनर्ग शरीर मिलता है, कभी तामसी शरीर मिलता है, कभी राजसी शरीर मिलता है, तो प्रभाव निरंतर चलते रहता है। संसार निरंतर है, संसार के बीच में हम है, इस देह को धारण किए, उस देह को धारण करते संसार का प्रभाव बना रहता है। तो ऐसे में हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? आपने ज्ञान की बात बताई कि सर्व सर्व भगवान को देखो, ठीक है, आपने नियम बताया ब्रह्मचर्य के व्रत को पालन करो, वो भी कर रहे हैं, परंतु यह समस्त कार्य करने के बाद भी तो मुक्त नहीं हो रहे। तो कैसे मुक्त हो सकता है जीव? तो उसके लिए अंततः वहां पर भी देखा गया कि जो परीक्षित महाराज ने युधिष्ठिर को स्वीकार की कष्टों से निवृत्ति कैसे होगी, तो वहां पर भी सांख्य और ज्ञान का वर्णन युधिष्ठिर गोस्वामी ने किया। यहां पर भी भगवान कपिल देव सांख्य ज्ञान का वर्णन किया, क्यों? एक कारण यह है, जैसे युधिष्ठिर गोस्वामी प्रसंग में बताया गया कि गुरु प्रभु शिष्य को परखना चाहता है कि शिष्य कम मतलब निचले ज्ञान में संतुष्ट न हो जाए, उसका लेवल क्या है। जब सांख्य का वर्णन किया, ज्ञान का वर्णन किया, तो उस समय भी तुरंत परिषद महाराज कह दिए दुष्ट शताब्दाम यत् पापं जानन्यः प्रार्थनोहितं करोति भूय विवश प्रायश्चित्त दुःखम्। आप बता रहे कि ये ज्ञान का बातें बता रहे हैं, आप नियमों की बातें बता रहे हैं, परंतु उन्हें क्या अनुभव किया? दुष्ट श्रुत भ्याम यत् पापं जानन्ति आप्य आत्मनोहितं। कि संसार में देखा गया कि लोग अपने आंखों से देखे हैं पाप करने से क्या दंड मिलता है, चोरी करूंगा तो डंडे पड़ते हैं, आंखों के सामने दिखा है, सामने किसी व्यक्ति ने चोरी की उसको 10 लोगों ने पिटाई। श्रुताभ्याम और सुना भी बहुत है, चोरी करने से कैसे चेंज जाते हैं। दुष्ट श्रुत व्यक्ति ने देखा और व्यक्ति ने सुना भी कि गलत काम करने से ये होने जा रहा है, जाननी मतलब जानते हैं अहितम मेरा इसमें अहित है, परंतु करोड़ों की भूल विवश फिर भी करते हैं, गलती करने से ये होगा, ये सुना भी है, गलती करने से ये दंड मिलेगा, ये देखा भी है, फिर भी हर व्यक्ति वही कार्य कर रहे हैं। तो ये किसके समान है? तो आप कहते हैं कष्ट निवर्त कष्ट प्रायश्चित, ये जितना भी आपको कर्मकांड की बात करता है, ज्ञान कांड की बात करता है, ये किसके समान है? यह कुंजल शौचवत, हाथी का जो स्नान होता है कि कभी अच्छा कार्य जब कुछ व्रत अनुष्ठान करते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं, परंतु उससे जैसे जरूरत हो तो मना धावती असत्पते, एक मन का एक स्वाभाविक, जैसे आप कई बार कंस्ट्रक्शन जब करेंगे आते हैं गीला सीमेंट होता है, और गीले सीमेंट के ऊपर यदि आपने जैसे लकीर खींच ली तो निशान बन जाता है, आप अगर पानी छोड़ेंगे तो जो जहां पर निशान बना हुआ है, जहां पर आपने लकीर खींची है, बराबर सहज वहीं पर पानी की धारा जाती है। तो वैसे ही मन का एक स्वाभाविक संसार के प्रति मोड है, आप मन को ऐसे छोड़ देंगे, जैसे किसी ने कहा कि आपका मन शुद्ध हुआ कि अशुद्ध है, पवित्र है कि अपवित्र, कैसे पता चले? तो एक संत अपना एक अनुभव करता है, क्या कीजिए, कमरे में से बैठ जाइए, कोई भी कार्य मत कीजिए, आप देखिए स्वाभाविक आपको मन कहां पे जाता है, वो आपकी आसक्ति पता कर लेगा। जब आप एकदम निष्क्रिय हो जाए, आप कोई कार्य नहीं कर रहे, एकांत बैठ जाओ, आपका मन बिना प्रयास के जिस दिशा में मुड़ जाए, समझ जाना चाहिए वही आपकी आसक्ति है। तो व्यवहारिक अनुभव है, हमारे मन जो है सहज के संसार के प्रति मुड़ा हुआ है। तो कैसे संसार के प्रति इतना जो प्रगाढ़ आसक्ति, संसार के प्रति इतना महत्व भाव बन गया है, ये निकलता कैसे है? इसी का उपाय है, भगवान कबीर जब शुद्ध गोस्वामी अंत तक वहां पर बताया है, जब परीक्षित महाराज ने ज्ञान को शांति को सबको जब मना कर दिया, निषेध किया, तब अंत तक वहां पर शुद्ध गोस्वामी ने केचित केवल अवत्या वासुदेव परायण अलम गुणवंती का स्नेह निहार भास्कर, केचित केवल एकमेव केवल श्री कृष्ण का पूर्ण आश्रय लेने से ही इस संसार का प्रभाव निकल सकता है। इस तरह से अगर गुणवंती का आश्रय ना निहार भास्कर, जैसे सूर्य का उदय जब हो जाता है, जैसे उदय होगा उसी क्षण अंधकार का नाश होता है, अलग से भी प्रयास करना नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप रात भर आप 6 घंटे तक अंधेरा था तो अंधेरे को धक्का मार के कमरे से निकालना पड़ेगा, निकालने का प्रयास नहीं किया जाएगा और ना उसको रोकने का सामर्थ्य आप में। ऐसा नहीं कि सूर्य का उदय होगा अंधेरे को पकड़ के बैठेंगे, अंधेरे को अपने जेब के अंदर भर के रख लीजिए, जाने नहीं दूंगा। सूर्य का उदय हुआ मतलब अंधेरा जाना ही, वैसे ही वहां पर शुद्ध गोस्वामी ने जैसे ही श्री कृष्ण की भक्ति सत्य है, कृष्ण की भक्ति तो बहुत दूर की बात है, वहां पर क्या गया न तथा ही अगवान राजन पुए तब आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत् पुरुष निषेव, श्री कृष्ण में मन लगने से आप भक्तों की बात की बात है, पाप से कौन व्यक्ति तपस्या से बड़े बड़े अनुष्ठान व्रत से उतना पवित्र नहीं होता है जितना यथा कृष्ण अर्पित प्राण पुरुष, ऐसा पुरुष ऐसा व्यक्ति जिसने अपने प्राण कृष्ण को अर्पित करके तत् निषेवया, ऐसा व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व कृष्ण को न्यौछावर किया, ऐसे व्यक्ति की सेवा से भी शुद्धिकरण हो जाएगा। कृष्ण की सेवा से शुद्धिकरण हो गई तो बात क्यों है, जो कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पित कर चुका है ऐसे कई सेवा में आता है, ऐसे साधु की संगति में आ जाते हैं, वही जीव को मुक्त कर देता है। और साधु शब्द का परिभाषा भी क्या कही, सो जन जो भक्ति सिखावे, सो जनक सो भक्त बनावे, सो साधु जो विषय छुड़ावे, साधु शब्द का अर्थ परिभाषा ही बन जाएगी, साधु शब्द में जिसके संपर्क आते हुए संसार छूटने लगता है, संसार का आकर्षण जैसे कम होने के मतलब समझ लेंगे सत्संग हुआ, साधु संग प्रभाव होता है कि तुरंत संसार का आकर्षण संसार में पकड़ है वो ढीली होने लगती है। तो ये उपाय यहां पर सुखदेव गोस्वामी बताए, जो आगे भगवान कपिल को बताएंगे। ये 19-20 श्लोक में माता देवती जिज्ञासा कर रही है, कैवल्यम तेषु अतः कथम, मुक्त कैसे होगी संसार से। ये सबसे प्रमुख प्रश्न है कि संसार में हम इतने रहते हैं, इतना अनेक संसार का अपनापन हो गया है कि लगता है हम ही संसार है। जिस तरह से दृष्टांत हम सदैव देते, अहंकार, अहंकार मतलब अहंकार, मैं ही कार हूं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत खून पसीने की कमाई से अंततः एक कार खरीदता है, तो कार खरीदने वाले उस कार में बैठ जाए तो कार के साथ अपनी पहचान बनाया जाता है, पीछे से ठोक दिया कार को, तो कार से बाहर निकल के वो क्या कह रहा, मुझे क्या धक्का मारा है, उसको धक्का मारा था। परंतु क्या हुआ, अहंकार मैं ही कार हूं, वो कार से अपना जब उसने परिचय बना दिया, तो वैसे ही संसार से अपना परिचय है वह निकल जाता है। जब आप कृष्ण से अपना परिचय का अनुभव धीरे धीरे करने लगे, उसी बात का उत्तर है भगवान कपिल देव बताएंगे भक्ति की व्याख्या हो 21 श्लोक से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 राम। गोविंद की।